الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حاضرین کرام, میرے محترم بزرگوں, دوستو, نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا کہ مسلمان کی پہچان بتلائی. عام طور پر ہم کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, روزہ رکھتے ہوئے, حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا, ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. یہ تو رہی اعمال کی, کسی کے سر پہ ٹوپی دیکھا, چہرے پہ داڑھی دیکھا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. یا رمضان کے مہینے میں جب مغرب کی اذان ہوئی تو ایک شخص جیب سے کچھ نکالا اور منہ میں ڈال لیا, ہم سمجھتے ہیں یہ مسلمان ہے, روزے سے ہے. لیکن میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتلائی ہے مسلمانوں کی, وہ یہ نہیں ہے. انہوں نے جو پہچان بتلائی کہ مسلمان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. چنانچہ ایک صاحب نے سوال کیا میرے شیخ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ غیروں کو ہم ستا سکتے ہیں. بھائی ظاہر ہے یا تو مسلمان کا لفظ ہے. فرمایا کہ چونکہ مسلمان کا سابقہ مسلمان سے پڑتا ہے, اسی لیے شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. جب آدمی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچے گا تو بدرج اولا غیروں کو بھی تکلیف دینے سے وہ خود کو بچائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتے, کسی کو تماچا نہیں مارتے, کسی کا گلا نہیں دباتے, ہم کسی کا جیب نہیں کترتے. لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ہماری زبان سے نامعلوم بہتوں کے ہم دل کو دکھا دیتے ہیں. کیا صحیح ہے یا نہیں؟ بعض دفعہ ہم اپنے طاقت کے بل بوتے پر, دولت کے بل بوتے پر, جاہ و منصب کے بل بوتے پر جو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے ایسا نہ کہو, اس کا دل دکھے گا, ہم یوں کہہ کے نکل جاتے ہیں میں نے مزاحن کہا تھا. میرے محترم بزرگوں, دوستو, وہ مزاح جائز نہیں جو کسی مسلمان کے دل کے دکھنے کا سبب بنے. مزاح تو وہ جائز ہے جو کسی کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے. روایت میں آئے, ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد بھی کہیے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دسترخوان پہ کھجور کھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاح سوجا, آپ نے کھجور کھایا اور بیج ادھر رکھ دیا, یعنی حضرت علی کی جانب. جب کھجور ختم ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی, سارا کھجور تو تم ہی کھا گئے. حضرت علی سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی مذاق فرما رہے ہیں. فرمایا, بے شک یا رسول اللہ, میں نے کھجور کھایا اور سارے بیج رکھ دیے, آپ تو بیج سمیت کھجور کھا لیے. میرے محترم بزرگوں, دوستو, تو جو مزاح کسی کے دل کو خوش کرنے کا سبب ہو وہ مزاح جائز ہے, کسی کے دل دکھانے کا نہیں. میرے بھائی, چنانچہ حدیث پاک کے اندر آیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مظلوم کے بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ظلم کیا گیا. کہا, مظلوم کے بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو. جب کافر کی بد دعا قبول ہو سکتی ہے تو پھر مسلمان کی بد دعا قبول نہیں ہوگی. اسی لیے کسی کا قول ہے, تیر کمان سے نکل جائے واپس نہیں آتا, کلمہ زبان سے نکل جائے پھر واپس نہیں آتا. कमान से निकले हुए तीर से जो जख्म होता है वो मरहम के लगाने से पुर हो जाता है, लेकिन जबान से निकले हुए कलमे से जो दिल में जख्म पैदा होता है वो मरहम पट्टी से नहीं पुर होता। तो इससे मालूम यह हुआ कि जबान से निकले हुए कलमे से बहुतों का दिल दुख जाता है। इसीलिए इन समय चाहिए अपने जबान की हिफाजत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सकत सलिमा व मन सलिमा नजा, जिसने सुकूत अख्तियार किया उसने सलामती का रास्ता अख्तियार किया, और जिसने सलामती का रास्ता अख्तियार किया उसकी निजात हो गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, एक वाकया याद आया। एक मशहूर बादशाह था, उसने अपना महल तामीर करने के लिए एक जगह मुतय्यन किया इस इलाके में। तो जहां जहां जिसमें उसका किसी का मकान था उसने सब खरीद लिया, हर एक को उसके मर्जी के मुताबिक कीमत देके सब ले लिया। लेकिन एक बुढ़िया थी जिसका एक कुड़िया था, कुड़िया समझ रहे हैं, छप्पर का फूस का मकान था। तो बुढ़िया इनकार कर दी, मैं नहीं जगह बेचूंगी। बहुत बादशाह के लोगों ने उसे खुशामद की, तू जितना मांगेगी बादशाह उतना कीमत देंगे, तू इसे दे दे। बाद लोगों को अपने वतन से, अपने घर से, अपने मकान से अजीब मोहब्बत होती है। आप लोग भी महसूस करते होंगे जब वालदैन ज़ईफ़ हो जाते हैं, बेटा कहता है कि अब्बा आप मेरे साथ आके रहिए, कहते नहीं बेटा घर छोड़ के जाने को जी नहीं चाहता। तो बुढ़िया कहने लगी, ना मैं किसी हालत पर बेचूंगी नहीं। जब ये तय हुआ कि बेचेगी नहीं तो हम लेंगे कैसे। बहरहाल उसका जगह उन्होंने छोड़ करके महल तामीर हो गई। जब तामीर हो गया, महल मुकम्मल हो गया, लेकिन वो जरा देखने में खराब लगता था कि इतना आलीशान महल और सामने बुढ़िया का कुटिया है। लेकिन क्या करें, बुढ़िया देने को तैयार नहीं थी। एक मर्तबा बुढ़िया अपने बेटी के घर चली गई और वहां कुछ दिन ठहर गई। जब वो वापस आई, उससे पहले लोगों ने मौके का फायदा उठाया, कहा बुढ़िया तो है नहीं, लाके बुलडोजर चला दिया। दो चार पांच मिनट में वो मिसमार हो गया। अब बुढ़िया आके अपना मकान तलाश करने लगी, इधर देखती है उधर देखती है, कहीं नजर नहीं आ रहा। किसी ने पूछा, अम्मा क्या ढूंढती हो? कहने लगी, बेटा मेरा यहां मकान था, नजर नहीं आता। तो कहने लगी, अम्मा तेरा मकान तो तोड़ दिया गया। कहा, कैसे तोड़ दिया गया? और शख्स कहने लगा, तू नहीं थी ना तो तेरा मकान तोड़ दिया गया। बस इतना सुनना था, बुढ़िया के दिल पे चोट लगी। उसने आसमान की तरफ इशारा किया, कहा अगर मैं नहीं थी तो क्या तू भी नहीं था? किसको मुखातब हुई? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब, कि अगर मैं नहीं थी तो क्या तू नहीं था? इतना कहना था, आनन फानन वो महल जमीन में धस गया। मजलूम के बददुआ से बचो अगरचे वो काफिर क्यों ना हो। देख लिया मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ मुफलिस कौन है? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास न दीनार है न दिरहम है, यानी रुपया पैसा जिसके पास नहीं वो मुफलिस है। फरमाया, नहीं, कयामत के दिन वो शख्स मुफलिस होगा जो बहुत सारे इबादात लेके आएगा, नमाज रोजा हज जकात वगैरह वगैरह नेक आमाल लेके आएगा, लेकिन किसी को उसने गालियां दी होगी, किसी की गीबत की होगी, किसी को सताया होगा, किसी का दिल दुखाया होगा, नतीजे में इसके सारे नेक आमाल उसके नाम आमाल में मुंतकिल हो जाएंगे। अगर इसी से काम बन गया तो ठीक, वरना उसके गुनाह इसके नाम आमाल में डाल दिए जाएंगे। लेकर तो बहुत सारे आमाल आया, लेकिन क्या हुआ, इन गुनाहों की वजह से सारे आमाल जाया हो गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें अपनी इसलाह की फिक्र करनी चाहिए कि कहीं हमारी जबान से खुदा न करे किसी का दिल दुख जाए। अक्सर लोग बड़े इससे कहते हैं, मैंने उसको ऐसा सलाद सुनाया छट्टी के दूध याद करा दिया। ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात क्या है? कुरान कहता है वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। असल मामले में कि पहलवान वो है जो गुस्से के घूंट को पी ले। गुस्सा तो सबको आता है, किसको नहीं आता? उलमा ने लिखा जिसको गुस्सा ना आए वो गधा है। गुस्सा आना बुरी बात नहीं, गुस्से के तकाजे पर अमल करना बुरी बात है। गुस्सा चूंकि हराम है तो जो भी अमल आदमी गुस्से की हालत में करेगा यकीनन गलत होगा। इसीलिए गुस्से की इसलाह बहुत जरूरी है कि आदमी गुस्से में, फरमाया गुस्से के लिए कि वो शख्स व अल्लाह के जो खास बंदे हैं वो गुस्से के घूंट को पी जाते हैं और लोगों को की गलतियों को दरगुजर करते हैं। चुनाचे एक बुजुर्ग के बारे में, एक शख्स के बारे में आया कि उसकी बेटी, उसकी बीवी ने उसके साथ कोई नाजेबा हरकत की। वो ये होना तो ये चाहिए था कि वो उसको सजा देता, होना ये चाहिए था उसको तलाक दे के जुदा करता, यानी ऐसी नामुनासिब हरकत उसने की। लेकिन उसने अपने गुस्से को पी लिया, सोचा ये भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आज मेरी बेटी से गलती होता तो क्या होता। उसने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गया ये सोच करके ये भी तो अल्लाह की बंदी है। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या बना? कहा एक अमल मेरा अल्लाह क्या कबूल हो गया, वो ये कि मैंने अपनी बीवी को जो उस दिन सजा नहीं दिया उसके नाजेबा हरकत पर अल्लाह ताला ने मुझ पर फजल फरमाया। कहा तो मेरी बंदी को माफ कर दिया, इसलिए मैंने भी तुझे माफ कर दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, एक साहब के बारे में आया कि उनकी बीवी ने सालन बनाया और तेज हो गया, यानी नमक तेज हो गई थी। वो बड़े गुस्से वाले आदमी थे। अब जब खाना खाने दोनों बैठे तो जो ही पहला लुकमा बीवी ने उठाया उसको महसूस हो गया कि अरे तो बाप मामला गड़बड़ हो गया, यानी सालन तेज, अभी तो ये मेरे ऊपर बरस जाएंगे। तो बेचारी मारे खौफ के कांपने लगी और शौहर की तरफ देखने लगी। हालांकि उनको भी गुस्सा आया उस दिन, लेकिन वो इसकी हालत देख के खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा। चाहते तो भी उड़ जाते, हमारा सालन अगर जरा तेज हो जाए नमक, उठा के बर्तन फेंक देते हैं, है ना, और फिर कहते हैं मुझे मालूम नहीं मेरा गुस्सा कितना है। मेरे अजीजों दोस्तों ये बात नहीं। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, क्या बना? कि अल्लाह ने उस दिन के नमक के लिए, अल्लाह ने, मैंने उस बंदी को माफ किया, अल्लाह ने मेरी मगफरत कर दी। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने गुस्से की इसलाह करा लें, हमारे जबान की इसलाह करा लें। कहते हैं जब जबान की इसलाह होती है ये फर्श वाला इंसान अर्श तक पहुंच जाता है। जब जबान किसी की बिगड़ जाती है तो वो अर्श से फर्श पे उतर आता है। लोग किसी से भी जब मोहब्बत करते हैं इसी जबान की वजह से, जबान शीरी हो तो हर एक उससे मोहब्बत करने लगता है। इसी जबान की इसलाह की जरूरत है। आज हम लोग जिस तरह जिस्मानी बीमारियों के इलाज के लिए दूर दूर जाते हैं और अपने इलाज कराते हैं, ये रूहानी बीमारियों का भी इलाज बेहद जरूरी है। वजह यह कि इसकी अगर इसलाह न हुई इन बीमारियों की, तो वहां जान खतरे में पड़ा था और यहां ईमान खतरे में पड़ेगा। जिस्मानी बीमारी का अगर आप इलाज न करें तो जान खतरे में पड़ेगा, और रूहानी बीमारियों का अगर इलाज न करें तो ईमान खतरे में पड़ेगा। किसी घटिया से घटिया मुसलमान से पूछो कि जान का बचाना जरूरी है या ईमान का बचाना, हर शख्स कहेगा नहीं भाई ईमान का बचाना जरूरी है। लेकिन अमली जिंदगी में हम अपने जान बचाने की जितनी फिक्र करते हैं इतना हम अपने ईमान के बचाने की फिक्र नहीं करते। काश हम लोग इस बात को एहसास करते तो हम भी अपने रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए दूर दराज का भी सफर गवारा करते और अल्लाह के उन बंदों की खिदमत में जाते जिन्होंने अपनी अपने आप को रूहानी बीमारियों से निजात दिला दिया। कुरान करीम में इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. آج جتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں, جتنے گناہ ہو رہے ہیں, اس کا واحد سبب یہی ہے ہمارے دل سے خوف خدا نکل گیا, اللہ کا خوف نکل گیا. اور اللہ پاک چاہتے ہیں اے میرے ایمان والو بندو میرا خوف دل میں پیدا کرو. یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اللہ کے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو جن کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی خشیت ہے. اگر آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے, کہتے ہیں کہ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا, تھوڑی دیر بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال بے ریا عبادت سے افضل ہے. کسی نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ جانا 100 سال کے, وہ بھی بے ریا عبادت؟ فرمایا غلط ہے, یہ شعر میں ترمیم ہونی چاہیے. کہا کیا ترمیم ہونی چاہیے؟ کہا ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بے ریا, کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت جو ہے 1,00,000 سال کے بے ریا عبادت سے افضل ہے. تو پوچھا کسی نے حکیم الامت سے تو حضرت یہ بزرگان دین صادقین ان کے کتنی دن صحبت میں رہے؟ 4 دن, 4 مہینہ, چلا 3 مہینہ, سال, 2 سال؟ فرمایا اتنا دن ان کے صحبت میں رہو ان کے جیسے ہو جاؤ. ظاہر بات ہے یہ ہر ایک کے صلاحیت پر موقوف ہے. کوئی 4 دن میں اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جائے, کوئی 4 مہینہ لگا لے, کوئی 4 سال. یاد رکھو اصلاح نفس فرض ہے, جس طرح نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج و زکات فرض ہے, اپنی اصلاح یعنی گناہ کو چھوڑنا فرض ہے. اصلاح کے کیا معنی؟ بری عادتوں کو چھوڑنا اور اچھے اخلاق سے آراستہ ہو جانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, فرمایا اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کی اصلاح کروں. یہی اصلاح ایسی چیز ہے میرے عزیز اور دوستو, جب انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ انسان فرشتے بھی سے آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ کے 18,000 مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. آخر وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے, نافرمانی کرنے کی قوت ہے, پھر بھی وہ اللہ کے خوف سے رک جاتا ہے, اسی لیے وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. فرشتوں کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, ان کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے نافرمانی کا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بھی اصلاح ہو جائے, اسی لیے کہ جب ہماری اصلاح نہ ہوگی ہمارے اعمال اسی طرح گناہ میں ضائع ہوتے چلے جائیں گے. میں اسی لیے عرض کر رہا تھا ایک مثال کے طور, بعض دفعہ جب آدمی کسی کو کچھ کہتا ہے سوچے کہ میری زبان سے جو نکلی ہوئی بات کہیں اس کا دل نہ دکھے. ایک میں مثال عرض کرتا ہوں, بعض دفعہ ہم لوگ اتنے مصروف رہتے ہیں کہ بعض چیزوں کی طرف دھیان نہیں رہتا. جمعہ کا دن تھا اور میں نے کپڑے پہنے, صاف پہنے آ گئے, مجھے احساس نہیں تھا میرے آستین پھٹا ہوا تھا, دیکھا نہیں, خیال نہیں آیا. تو نماز کے بعد ایک دوست نے کہا کیوں گھر میں کپڑے نہیں تھے کیا؟ کیا ہوا بھائی؟ کہا پھٹے ہوئے کپڑا پہن کے آ گئے. دیکھا تو واقعی پھٹا تھا. تو میں نے کہا رے بھائی کیا کروں, جلدی میں آ گیا نا, مجھے خیال نہیں رہا, ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ بھی بتائیں, کوئی بھی ہو وہ, کسی کو اس بات سے دکھ ہوگا؟ الحمدللہ گھر میں اس سے زیادہ کئی جوڑے کپڑے اچھے موجود ہیں. ارے ہو گیا, ہو گیا غلطی, تو اس کو وہ ذہن میں نہیں لے گا. لیکن یہی جملہ عید کے دن یا جمعے کے دن کسی یتیم بچے سے کہہ دو, کیوں بیٹے کپڑے نہیں تھے کیا, تم نے پھٹا پہن لیا, یقین مانو اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے گا. حدیث پاک کے اندر آیا کہ یتیم کے سر پر اگر محبت و شفقت سے ہاتھ پھیر دو تو جتنے بال اس کے سر پر ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گے. لیکن افسوس بجائے اس کے کہ اس کو دو محبت کا بول بولتے, ہم نے اس کا دل دکھا دیا. دکھایا نہیں؟ پتہ نہیں آپ حضرات کا احساس نہ ہو, چونکہ میں نے یتیمی کا دن گزارا ہے, مجھے احساس ہے کہ جب کوئی کچھ کہتا تھا تو دل پہ چوٹ لگ جاتی تھی. بات سمجھ میں آئی نہیں آ گئی؟ تو انسان ہمیں چاہیے کہ کچھ کہنے سے پہلے इस बात की फिक्र करें कि कहीं हमसे कोई बात ऐसी ना हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अर्ज करना था, एक सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि निजात मल ना जा, निजात का रास्ता क्या है? फरमाया अमलिक अलैक लिसान का, अपने जबान को अपने कंट्रोल में रख लो, जब जबान कंट्रोल में आ जाएगा, अपने काबू में आएगा, तो बहुत सारे तुम गुनाह से बच जाओगे, यही तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम अगर चाहते हैं हमारी जबान हमारे काबू में आ जाए, हमारी इस्लाह हो जाए, हम कोई बात कहें तो सोच के कहें, इसके लिए अहलुल्लाह की सोहबत की जरूरत है। इसी को शायर ने कहा, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों के नजर से पैदा। जब इंसान अल्लाह वालों के नजर से के सोहबत में आता है तो उनके नाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं, दाम बदल जाते हैं। जब इंसान अल्लाह वालों की सोहबत में आता है, एक मिसाल से समझा दूं आपको। आप लोग चाय पीते नहीं पीते हैं? सभी चाय पीते हैं। कोई कहते हैं चाय पी लीजिए, चाय पिलाई दीजिए। कभी आपने गौर किया चाय पीने की चीज है? तो आप भी कहेंगे क्या ये कहां से आए जी, अजीब बात करते हैं, चाय पीने की नहीं तो क्या खाने की चीज है? जरा सोच के बोलें, चाय किसको कहते हैं? जो बाजार में जो पत्ती मिलता है वही ना चाय है, या वो डस्ट जो होता है वही ना है? क्या ये आप पी सकते हैं? आप इसे पानी से फांक सकते हैं, निगल सकते हैं, पी नहीं सकते। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? पानी ने जाके चाय से दरख्वास्त की कि अपना फैज मुझको पहुंचाइए, अपनी क्वालिटी अपनी खूबी मेरे अंदर मुंतकिल कर दीजिए। तो चाय ने कहा ऐसे थोड़ी होगा, मेहनत करनी होगी, मुजाहिदा करना होगा, जब जाके तुम चाय बनोगे। बोला मैं तैयार हूं। कहा जाओ अपने अंदर हरारत पैदा करो, गर्मी। उसने गया सूरज के शुआओं में बैठ गया, आप देखेंगे गर्मी से थोड़ा सा गुनगुना गर्म हो जाता, नहीं होता? चाय डालिए कुछ होगा? आके कहा मैं तो गर्म हो गया। कहा ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके अंदर हरारत होनी चाहिए, जिसमें चाय पानी खौलने लगता है कि नहीं? अब वो जाके स्टोव का सहारा लिया, या कहिए गैस का लिया, हीटर का लिया, जो भी हो सहारा लिया, तो उसके बाद पानी खौलने लगा। जब पानी खोलने लगा, चाय ने देखा कि हाँ, अब मुजाहिदा करके इसके अंदर वो सलाहियत पैदा हो गई मेरे क्वालिटी को एक्सेप्ट करने की, मेरी खूबियों को वो हासिल करने की। अब आप डालें चाय, क्या होता है, रंग छोड़ देता? नहीं छोड़ता। फिर आप लोग क्या करते हैं? पता नहीं क्या करते हैं, हमारे घर में हमारी अम्मी हमारी बेटियां उसे छान लेती हैं किसी छानी से, तो चाय अलग हो गया, पानी अलग हो गया। जाते जाते चाय ने कहा आज से तेरा नाम अलग हो गया, तेरा दाम अलग हो गया, तेरा काम अलग हो गया। पहले क्या कहते थे? पानी कहते थे भाई। अब कहेंगे पानी, लोग कहेंगे बेवकूफ है क्या, देखता नहीं? पहले चाय नाम बदल गया? नहीं बदल गया, पानी था, हो गया चाय। अच्छा आगे कहा कि पहले मैं किसी का प्यास बुझाता था, अब तू टॉनिक का काम देगा। तहज्जुद वक्त के वक्त में किसी ज़ईफ आदमी को उसकी बेटी या उसकी बहू एक प्याली चाय पेश कर दे, देखना कितनी दुआएं लेती है। अल्लाह जज़ाए खैर के, हैं तूने चाय पिला के दिल खुश कर दिया, बेटी मुझे ताजा दम कर दिया, टॉनिक का काम किया नहीं किया, हैं नाम बदल गया, काम बदल गया। पहले पानी मुफ्त मिला करता था, अब प्याली 10 रुपया बिकेगा, बिकेगा नहीं बिकेगा? इसी तरह जब कोई गुनाहगार किसी अल्लाह वाले के सामने आता है तो उसके भी नाम बदल जाते हैं, दाम बदल जाते हैं, काम बदल जाते हैं। पहले लोग उसको लुच्चा कहते थे, उसके बदअखलाकी की वजह से, बुरे तौर तरीके की वजह से उसको कहले लुच्चा, कोई लफंगा, कोई 420, कोई टाउटर, न मालूम क्या क्या अलकाब से पुकारते थे। वो गया और किसी अल्लाह वाले की खिदमत में, कहा मेरे हाल को दुरुस्त करो, कहा मुजाहिदा करना होगा। कहा क्या करना? कहा अपने जाहिर को बनाओ। किस तरह? जिस तरह जाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जाहिर बनाओ। फिर कहा बातिन को बनाओ, मुजाहिदा करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और तुम सुन्नत के पाबंद हो, जाहिरन भी और बातिनन भी। तुम जब देखे कि हाँ सुन्नत के पाबंद हो गए, तो कभी कभी इसमें कोताही होने पर बुजुर्ग डांट डपट भी करते हैं ताकि इसलाह हो जाए, है ना। जब तक आदमी के ऊपर कोई मार ना डालोगे वो सुधरने क्या नहीं है। तो बाज दफा हमारे मशायख हमें डांट डपट करते हैं, इतनी मोटी सी बात तुमसे नहीं हो सकती। हैरत है, मेरे शेख ने मुझे खुद डांटा, मैं लिहाफ को लपेट रहा था, मुझे डांटा, कहा अभी तक तुमको लिहाफ तय करने का तरीका मालूम नहीं। अब हमने उठाया बंद कर दिया, कहा नहीं, सिराना सिराने से मिलेगा, पैताना पैताने से मिलना चाहिए। ये सारी बातें मेरे अजीजों किताब में नहीं मिलता, ये बुजुर्गों के सोहबत से। तो अब एक जमाना आता है जब शेख देखता है मेरा बन ये दोस्त अपने आप को जाहिरन और बातिनन सुन्नत का पाबंद बना लिया, कहता है जा आज के तारीख से तुझे इजाजत देता हूं दीन की खिदमत कर, तेरा नाम आज से बदल गया, तेरा दाम बदल गया, काम बदल गया। पहले क्या कहते थे, लुच्चा कहते थे, लफंगा कहते थे, पता नहीं क्या क्या बुरे अलकाब से पुकारते थे, अब नहीं कहेंगे। अब उसको देखते कहेंगे वली साहब आइए, हाफिज साहब तशरीफ लाइए, सूफी साहब आ जाइए, हालांकि वह हाफिज नहीं, वह आलिम नहीं है, लेकिन लोग कहेंगे सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, क्यों नाम बदल गया। पहले फरमाया मैं गुनाहगारों को गुनाह से तौबा कराता था, अब तू अल्लाह के बंदों को गुनाह से तौबा कराएगा। नाम बदल गया, काम बदल गया, लोग पहले मेरी इज्जत करते थे, अब इंशाअल्लाह तेरी इज्जत करते हैं। जाहिर बात है जब इंसान दीन पर अमल करता है, हैं? याद रखो इंसान को जो इज्जत मिलती है दो चीज से, या माल से या अमाल से। माल से जो इज्जत मिलती है वो दायमी नहीं होती, वक्ती होती है, टेम्पररी होती है, जब माल खत्म तो इज्जत खत्म। लेकिन आमाल से जो इज्जत इंसान को अल्लाह अता करते हैं वो दायमी हुआ करती है, दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया से एक हिस्सी मिसाल, कितना बड़ा कलेक्टर हो, गवर्नर हो, एसपी हो, डीएसपी, आज रिटायर किया कुर्सी छोड़ दी, कोई सलाम तक नहीं करता, करता है कोई? उसकी गई इज्जत खत्म, कुर्सी छोड़ दिए बस काम खत्म। लेकिन अल्लाह वालों की सिफत अजीब, जितने ओल्ड होते हैं उतना गोल्ड हो जाते हैं, है कि नहीं है? जितने जईफ होते हैं अल्लाह वाले लोग उनकी कदर करते हैं, कह रहे इनसे दुआएं ले लो, है कि नहीं है? जो अल्लाह के लिए अपनी जवानी को कुर्बान करेगा अल्लाह उसको सौ जवानी अता करेंगे, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी। मेरे अजीज और दोस्तों, अल्लाह ने हमें जवानी दी अल्लाह की इताअत के लिए, फरमाबरदारी के लिए, उनके नाफरमानी से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला हमारे तमाम आज़ा की हिफाजत फरमाए और जबान की खुसूसन हमारी हिफाजत फरमाए, हम सबको अक्ल सलीम फहम सलीम अता करे। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين। اے اللہ اس تھوڑے دیر دینی مذاکرے کو قبول فرما، اے اللہ اس کے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا، اے اللہ زندگی کا اکثر حصہ آپ کی نافرمانی میں تباہ برباد ہو چکا، ہماری اس تباہ شدہ عمر پر رحم فرما، بقیہ زندگی میں اس کی تلافی فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر آپ اپنی غلامی نصیب فرما دیجئے، حب مال حب جاہ ریاکاری سے بچا لے، اخلاص کے ساتھ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب اپنے اصلاح سے غافل ہیں، اے اللہ ہمارے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب کچھ ہوتا ہے، بس آپ ہمارے تزکیہ کا ارادہ فرما لیجئے، ہم سب کو تکمیل اصلاح کی توفیق عطا کر دیجئے، ہم سب کو کئی اللہ والا ملا دیجئے جن کے ہاتھ پر توبہ کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، دنیا و آخرت کو بنا لیں۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا صحیح اور قوی تعلق نصیب فرما، ہمیں اپنی رضا و قرب و معرفت نصیب فرما، ہمیں اپنے مقبول و محبوب بندوں کو زمرہ میں داخل فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، سب کے جملہ حاجات و جملہ ضروریات پورے فرما، سب کے جملہ نیک مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے اللہ جتنی دعائیں کی محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی وصحابہ اجمعین۔